स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच डिड यू गाइज फाइंड आउट कि हम अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, वेयर डू वी स्टैंड? अपनी गलतियाँ पता चली या नहीं चली? सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, वेयर डू यू गाइज रेट योर सेल्फ? कोई एटलीस्ट दो तीन सिस्टर शेयर करें. मैं अपना करूँ तो आई थिंक आई एम फुल 10 on 10. मुझे पता है वेयर ऑल आई नीड टू फिक्स, इंशाल्लाह. सो एटलीस्ट अपनी खामियाँ पता चली, अल्हम्दुलिल्लाह. राइट आज हम सोचते हैं तकब्बुर हम में नहीं है, जुल्म हम नहीं करते, हम तो कभी भी जुल्म नहीं करते. बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जुल्म? बिल्कुल सही, हक नहीं रखना. एज सिंपल एज झूठे एवरीथिंग. चाबी हम और इंस्टीट्यूट से जाके, दिस वुड बी माय पर्सनल रेक्टिफिकेशन, के उतार के अबाया कहाँ रखते हैं, स्कार्फ कहाँ रखते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें. जी राइट, यस, इन अ वे कि हम हमारे पड़ोसी का हक. जी ठीक है. कितने लोगों ने ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम सेल्फ? मिस्टेक्स पता चल गई, अपनी मिस्टेक्स को नोट किया और मौका मिला. कितनी मिस्टेक्स ऐसी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स हो गई? ट्राइंग, इट्स ऑन द लिस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह. और कितनी बार ऐसा हुआ कि सिचुएशन में वो लिस्ट याद रही? राइट. आज सुबह जो हम बात कर रहे थे कि व्हेन यू नो यू आर राइट, यू हैव द एबिलिटी टू प्रूव योर पॉइंट, और उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट छोड़ दें तो हमारे लिए जन्नत में महल है इंशाल्लाह. तो आई थिंक हम एवरी डे इफ़ वी वॉन्ट टू चेंज आर लोकेशन, तो जन्नत में मुझे लगता है हम कर सकते होंगे, क्योंकि फिर हमारे पास कितने घर होंगे. तो इंशाल्लाह चलिए हम कंटिन्यू करेंगे.
अस्सलामु अलैकुम शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ये एक ऑनलाइन से क्वेश्चन है कि हम ज़कात सिर्फ उनको दें जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं. ये सब में आज का टॉपिक भी नहीं है, और इसको इस एक जुमले में नहीं समेटा जा सकता. तो जिनका ये सवाल है, आप उनका फ़ोन नंबर्स दे दीजिए, और इंशाल्लाह उनको किसी ऐसे ग्रुप में डाल भिजवा दिया जाएगा जहाँ क्वेश्चन आंसर सेशंस होता है, तो इसका जवाब वहाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला. फिर इसके बाद अब देखिए, हम जुल्म तक पहुँच गए ना. बात कहाँ से शुरू हुई थी? सेल्फ प्रेजिंग, खुद पसंदी, मुतकब्बिर. जो तकब्बुर करता है ना, वो किसी दूसरे को ख़ातिर में नहीं लाता, और ये बुनियादी चीज़ है जिसके बाद फिर हम दूसरों पे जुल्म करते हैं. अब जुल्म की डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ हसद. हसद क्या है? किसी की नेमत को देखकर नेमत देने वाले से नाराज़ होना. मुझे ऐसे लगता है कि हसद क्या है कि आप अल्लाह ताला की बांट पे नाराज़ हैं, उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, और वो कोई ज़्यादा हकदार था. और हकीकत यह है कि कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर नेमत वाले से हसद किया जाता है. और जितना ज़्यादा किसी भी नेमत का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा दूसरों के अंदर दिखाएंगे बढ़ाएंगे, उतना हसद होगा. खूबसूरती वाले से भी हसद किया जाता है, माल वाले से भी हसद किया जाता है, दौलत वाले से भी, इल्म वाले से भी, और इसी तरह से हर नेमत का हिसाब है. अपने आप को बचा के रखने का तरीका ही यह है कि इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे. और अगर आपके मेरे दिल में किसी के लिए हसद आ जाता है, तो बिलीव मी, इससे बचने के लिए तो पहली फुर्सत में काम कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ने इसके बारे में जो कुछ बताया है, अगर आप उसको पढ़ के महसूस कर लें, तो उसके बाद तो दिल चाहेगा कि किसी के बारे में सोचें भी ना, किसी से मैं कुछ ना कहूँ, कोई मुझसे ना कहे. क्यों? आपने फरमाया हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे सूखी लकड़ियों को आग खा जाती है. कभी आप इसको इमेजिनेशन में रखें और एक एक्टिविटी बनाएं कि कहीं बहुत खूबसूरत बाग था, जंगल, और आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ियाँ, वो सब्ज़ा सूखता गया, लकड़ियाँ बनती गईं, और फिर एकदम कहीं से चिंगारी निकली और आग लगी और सब जल गया. ऐसे ही हमारी नेकियों का बाग भी हसद की वजह से सूखने लगता है. हम दूसरों से जब हसद करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारी नेकियों में से स्पिरिचुअलिटी चली जाती है, रूहानियत ही कोई नहीं है। दिल तो किसी आग में जल रहा है, आपको जहन्नुम क्या कहाँ याद आएगी। और एंड पे फिर नतीजा क्या निकलता है कि आमिलतुन नासिबात, बड़े ही बदनसीब हैं वो लोग क़यामत के दिन, जिनको बहुत सारी नेकियां करने के बावजूद ये खबर सुनने को मिलेगी कि तुम्हारी तहज्जुदें, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारा ये सीखना सिखाना सब जल के राख हो गया उस हसद की वजह से, जो किसी इंसान से करते थे, किसी गिरोह से करते थे या किसी और को। और जो हदीस है वो अबू दाऊद की है, इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खाती है। और आपने फरमाया कि हसद ना करो, इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न उकदिबल हदीसी वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तहासदु। तो इसमें भी हसद की बात है। और हसद करने वाले से अल्लाह की पनाह मांगनी है, कैसे? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ्फासात फिल उक़द व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। सूरत फलक आयत नंबर 5। और फिर याद रखिए कि हसद करके बंदा किसी का नुकसान नहीं करता अपने नुकसान के सिवा। सूरत निसा 54, अम यक्सदूनन्ना सा अला मा आताहुम मिन फदली, क्या ये लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया। तो अल्लाह के फैसलों पे नाराज़ होना है हसद करना। और आपने फरमाया निसाई की रिवायत 3109, यानी अब हसद का नुकसान क्या है दूसरा, ला यजतमियान फी कल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद, आदमी के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते। ईमान होगा तो हसद नहीं होगा, और हसद आ गया तो समझिए कि ईमान चला गया है। इब्ने माजा की रिवायत है 4216, आप अल्लाह के नबी ने फरमाया, सवाल किया गया लोगों की तरफ से कि लोगों में सबसे अफजल कौन है, आपने फरमाया अब लिख लीजिए और अपने लिए ये गोल बनाइए, कुल्लु मखमूमुल कल्ब सदूक लिसान, कहा कि हर साफ दिल जुबान का सच्चा। लोगों ने कहा जुबान के सच्चे को तो हम जानते हैं, फमा मखमूमुल कल्ब, महमूमुल कल्ब क्या है। काला, अब इसको गोल बनाइएगा, हुवत तकीयुन नकीयु, ये तो वो है जो परहेजगार है, मुत्तकी, नकी साफ सुथरा, साफ दिल वाला, ला इस्मा फीही कोई गुनाह उस दिल में ना हो, वला बख्श ना बगी यानी बगावत, वला गिल्ला और ना बुगस, गिल बुगस, वला हसद और ना हसद हो। इब्ने माजा 4216। क्या पता चला कि हसद से बचाना है अपने आप को, नेमतों को छुपा के रखिए, बहुत ज़्यादा इसका एक्सपोजर नहीं करना। आप चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई नेमत है और कोई आपसे कोई हसद ना करे, तो इलाज क्या है, दुआएं पढ़िए, सुबह शाम की दुआएं पढ़िए, सूरत नास फलक जो भी हमने देखी उसको पढ़िए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को खोल खोल कर ना दिखाएं। आज दुल्हन को सर से पांव तक सजा संवार कर स्टेज पे बिठा देते हैं, कितनी नज़रें पड़ती हैं, क्या सारी प्यार की नज़रें होती हैं, कितनी हसद की, कितनी तकाबुल की, कितनी नज़रें बद की। तो फिर अगर घर टूटें तो फिर वजह शायद ये भी हो सकती है। और याद रखिए कि पहले ही अमलों की पूंजी बड़ी थोड़ी है, और अगर उसमें से भी कुछ इधर उधर निकल गया तो बाकी क्या बचेगा। तो हमेशा अपने आप को बचाएं। और फिर इसी तरह से याद रखिए, जिसको कुछ मिला क्या ये उसका फैसला था, नहीं। हज़रत यूसुफ़ की मिसाल कुरान पाक में बेहतरीन है। भाइयों ने हसद किया किस पे, मोहब्बत पे। इबलीस ने हसद किया आदम को जन्नत में दाखिल किए जाने पे, क्या ये आदम का फ़ैसला था। और अगर यूसुफ़ के दिल में अल्लाह ने, सॉरी, बाप के दिल में यूसुफ़ की मोहब्बत डाल भी दी थी, अगर बिलफर्ज भाइयों का इल्ज़ाम सच्चा भी था, तो क्या ये यूसुफ़ का किरदार था, ये यूसुफ़ के हाथ में था। आज भी आपको अगर कभी किसी के दिल बारे में महसूस हो, अब सबसे जो प्रैक्टिकल चीज़ करनी चाहिए मुझे आपसे वो क्या है, आपको कैसे पता चले कि आपको किसी से हसद है? पहली बात है उसकी नेमत देखकर खुश ना होना, लोग उसकी तारीफ़ करें अब दिल में कोड़े, हाँ आपको क्या पता, सब तो मैं हो करती हूँ, ये तो मेरी चीज़ है, ये ऐसे ही है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि उसके जवाल की दुआ करना या तमन्ना करना। एक होता है बंदा कहता है किसी को मिला, क्यों मिला, दूसरा दर्जा होता है किसी को मिला मुझे भी मिले, यानी उससे छीने और मुझे मिले। सबसे बदतरीन हसद है कि मुझे मिले ना मिले इसका ख़त्म हो, ये हसद है। खिप्ता भी कहते हैं वो, जिसमें इंसान थोड़ा बहुत 19-20 के साथ लगा रहता है, अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ते जड़ाते। तो हमेशा से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे अपने ख़जानों से दे। क्या अल्लाह के पास ख़त्म हो गया हुसन? क्या अल्लाह के पास बेटे ख़त्म हो गए, औलाद ख़त्म हो गई है? आप कहें अल्लाह जिसने जो तूने किसी को जो दिया तो मुझे भी दे दे, उसको मिले उसका रहे, मैंने उसका लेकर करना क्या। और अमूमन देखिए कई ऐसी चीज़ों में हसद होता है कि आपका उससे कुछ लेना देना नहीं, जस्ट फॉर योर नेगेटिविटी, उसको क्यों मिला, उसको क्यों मिल गया। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी आप देख लीजिए कि जो चीज़ आपके पास अल्लाह की नेमत होती है ना, वही आजमाइश बनती है। यूसुफ अलैहि सलाम खूबसूरत थे ना, ये खूबसूरती जंग कहने चाहिए कि ये खूबसूरती जेल में ले गई है ना, क्योंकि वो खूबसूरती थी। तो जब भी अल्लाह से कोई नेमत मांगे ना, तो साथ ही कह दें कि अल्लाह इस नेमत के साथ मुझे आजमाइश से बचाना, मुश्किलात में बचाना। फिर इसी तरह से दिल को बड़ा करें, अपनी चीज़ों को देखें। अगर किसी से हसद महसूस हो ना, तो अपनी खैर को देखना शुरू करें। और मैंने जैसे अर्ज़ किया था आपसे, DQ10 दौरे कुरान 2010, उसका पूरा थीम प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल था, तज़किया नफ्स। पहले पारे का टॉपिक ही हसद था, और पूरी सूरत के जो भी हिस्सा है उस पारे में उसको रख के दिखाया था कि कैसे बनी इसराइल ने हसद किया और अल्लाह ताला ने फिर उनको इस चीज़ की सज़ा दी थी। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह दिल को पाक कर दे, भी नियाज कर लें। अब यहाँ फिर अपने आप को सोचें, सेल्फ प्रेजिंग, खुद को बड़ा समझना, उससे क्या हुआ, हाँ हाँ इसको क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था। फिर उसी से जुल्म होगा। हसद के साथ जो चीज़ हमारे दिलों में आएगी वो क्या होगी कि आप इसको किसी तरह नुकसान दें, और नुकसान देने वाली चीज़ों में एक चीज़ धोखा, धोखा कर देना। धोखा क्या है, डिसीविंग, किसने किसको धोखा देना है, क्या है सबसे बड़ा धोखा बंदे को रब के बारे में। सूरह इन्फितार आयत 6, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज़ ने तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में धोखे में डाल दिया। यानी इंसान का धोखा क्या अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा, अल्लाह ने बड़ा मुश्किल दीन दिया, और अल्लाह ऐसा, ये तो इतना प्यारा अंदाज़ है, जैसे कोई दोस्त दोस्त से कहे तुम्हें मेरे बारे में किसने बदगुमान कर दिया, या ये कहना अल्लाह ने तो बस आग में ही डालना, या अल्लाह ताला की रहमत को बहुत ही फिर ज़्यादा अपने लिए लाजिम समझ लेना, ये सारी चीज़ें अल्लाह के मामले में धोखे हैं। दूसरा धोखा जिसमें इंसानों की अक्सरियत मुलव्वस है, दुनिया का धोखा, दुनिया की ज़िंदगी धोखे का सामान। सूरह आले इमरान 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ। और हकीकत है कि ये खेल तमाशे हैं। सूरह हदीद आयत 20 भी लिख लें, तो दुनिया का धोखा सबसे बुरा धोखा है अल्लाह के साथ धोखे के बाद। तीसरा धोखा इंसान के साथ क्या लगा हुआ है, बल्कि इसका एक और रेफरेंस भी नोट करें दुनिया के धोखे का, सूरत अनाम 70, और वो क्या है, दीन के नाम पे धोखा। ये बड़ा ही बदतरीन धोखा है, लोग दीन को खेल तमाशा बना लेते हैं। सूरत अल अराफ 51, अल्लज़ीन तखज़ू दीनहुम लहवं व लाइबं व गर्रतहुमुल हयातु दुनिया, जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तफरीख बना लिया और दुनिया की ज़िंदगी ने इन्हें धोखे में डाल दिया। फिर इसी तरह से सूरह जासिया 35, वगर्रत कुमल हयात दुनिया, और इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों का मजाक बनाया और दुनिया की ज़िंदगी ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। धोखा देने वाला, ये कौन है? शैतान। जैसे अल्लाह ताला के नाम है ना, अर रहमान अर रहीम, अल के साथ, शैतान का एक नाम है अल गरूर। सूरत लुकमान 33, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के मामले में धोखे में ना डाल दे। शैतान क्या धोखा देता है? तुम इधर ही रहो। नंबर एक, धोखा देते हैं वादों के साथ। सूरत बनी इसराइल 64, वमा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान के सारे वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं। धोखा देने वाली चीज़ों में दूसरी चीज़ है पुरफरेब बातें, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली ग़ुरूरा। सूरत अनाम 112, 8वें पारे की पहली आयतों में चिकनी चुपड़ी बातें, मीठी बातें। आज देखें जितना मार्केटिंग का बिजनेस है धोखा है। चीज़ को क्या बनाकर पेश करते हैं, थोड़ी चीज़ को इतना। जो नेट बिजनेस देखिए, 80% चीज़ों में धोखा हो जाता है। फिर इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को भी धोखा देते हैं। कैसे? तिर्मिज़ी 2404, अबू हुरैरा की रिवायत है, फरमाया आखिरी ज़माने में कुछ लोग निकलेंगे और दीन को दुनिया के साथ तलब करेंगे, और तलबे दुनिया के लिए दीन के कमाल हासिल करेंगे। अल्लाह की बनाई इस हदीस को तो सुनने से पहले पानी पीना पड़ेगा। दीन के नाम पर कैसे धोखा? पहले बात दीन में से दुनिया की तलब, फिर कमाल लेंगे दुनिया का, फिर लोगों को दिखाने की खातिर दुम्बों की खालें पहनेंगे, यानी बाहर बड़ा मोटा जोठा पहनेंगे कि लोग हमें नेक समझें। नरमी में इनकी जुबानें शक्कर से ज़्यादा मीठी होंगी, लेकिन इनके दिल भेड़ियों से ज़्यादा बदतर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम मेरे साथ मगरूर हो या मुझ पर जुर्रत करते हो? सो मैं अपनी ज़ाते मुकद्दस की कसम खाता हूँ, मैं इनके लिए ऐसा फितना उठाऊँगा कि इनका अक्लमंद भी हैरान रह जाएगा कि वो क्या मेरे साथ गरूर करते हैं या मुझ पर जुर्रत करते हैं। क्या पता चला कैसे लोग, जिनको लोग बहुत नेक समझेंगे लेकिन वो असल में नेक नहीं होंगे। कोई दुनिया का मुफाद होगा। देखिए, मुफाद पैसे का नहीं होता। ओनली मनी इज़ नॉट द प्रॉफिट, हुब्बे जाह ऑनर, आपके हाथ में चाबी, आपकी अपनी मर्जी, आई एम एट माई ओन। अब ये सब चीज़ें क्या दिखती हैं कि इसमें ठीक है, इट्स फाइन। आप देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला किस तरीके से आपको, मुझे इन सारी चीज़ों के पढ़ने के बाद अपना मुहासबा करना नहीं सिखा रहे। दिल कर रहा है किसी और जगह देखने को? है कोई और दामन जिसके ऊपर कुछ धब्बे दिखे? वो कहते हैं ना कि पड़ी जो अपने ऐबों पे नज़र, ज़माने में कोई बुरा ना रहा। आज हम दूसरों को देखने में बहुत खुशियां महसूस करते हैं, लेकिन अपने ऊपर देखना सबसे बड़ी बात है। और याद रखिए कि ऐसे ही धोखों में से एक बहुत बड़ा धोखा रियाकारी। देखने में ये लगे कि आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिखावा दुनिया को दिखाने के लिए। तो रियाकारी भी एक बहुत बदतरीन अखलाक की किस्म है। सूरत बकरा 264, अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसे लोगों की बात की, कल्लज़ी युन्फिकु मालहु रिया अन्नासी वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जो दिखावा करते हैं लोगों को, जाहिर क्या लगता है कि वो अल्लाह के रास्ते में लगे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या था? कि लोग देख ले। सवाल पैदा होता है कि रियाकारी कैसे की जाती है। निसा 38:39, फरमाया ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, जो कुछ उनको अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करना, एक्सपोजर करना, फ्लॉन्ट करना। फिर इसी तरह ये किन की अलामत है दिखावा करना? मुनाफिकों की। सूरत निसा 142-143, इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम। और ये मुनाफिक हैं जो अल्लाह के साथ धोखाबाजी करते हैं, और वो सारी बात जो मजबजबी नबई नजालिका ला इला हाउलाई वला इला हाउलाई, याद रखिएगा इस बात को भी। ये जो मिसाल कुरान में दी गई ना, इसको पढ़ने के बाद तो वाकई हमें अपना मुहासबा करना पड़ता है। आप देखिए कि ये जो बात है कि मुनाफिक दो कश्तियों का सवार होता है, अक्सर सुनते हैं बोलते हैं, कभी समझ नहीं आती ये बात, लेकिन ज़रा सा गौर करें ना तो तौहीद क्या है? एक रब पे नज़रें लगाना। मुनाफिक कौन है? रब के साथ दूसरों पे भी नज़रें लगाता है। और ये कब होता है? जब अल्लाह पे पूरा यकीन नहीं होता, एतमाद नहीं होता। फिर इसी तरह से आप देखिए सूरत हूद 15 और 16 के रियाकारी कब की जाती है, जब बंदा आखरत के लिए की गई कोशिशों का सारा हिस्सा इस दुनिया में लेना चाहता है। अल्लाह कहते हैं उनका सब ज़ाया होगा, और रियाकारी का नुकसान, सारा कुछ ज़ाया, पकी पकाई हंडिया गिर गई। फ़वैलुल्लिलमुसल्लीनल्लज़ीनहुमन सलातिहिम साहून अल्लज़ीनहुम युराउन वयमनउनल माउन। सूरह माउन 4-7। तो रियाकार की तो नमाजें भी उसके लिए मुश्किल पड़ जाती है। इसी तरह सूरह अनफाल 47, अल्लाह ताला कहते हैं वला तकूनु कल्लज़ीन खरजू मिन दियारी बतरं वरियान नास, उन लोगों जैसे रंग ढंग ना इख्तियार करो जो अपने घरों से निकले लोगों को अपनी शान दिखाते हुए, और असल में वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। क्या इसको सुनकर कोई एक शादी का पंप एंड शो और ग्लैमर नहीं नज़र आ रहा? किस तरह बरातें सच सच के जाती हैं, कैसे घोड़ों पे बैठकर, कैसे बग्घियों पे बैठकर, सिर्फ इसलिए कि लोग कहें कि क्या शादी की है। तो याद रखिए कि अच्छे काम में भी और दुनिया के काम में भी दिखावा, रियाकारी बदतरीन अमल है। बुखारी की रिवायत है 6499 और मुस्लिम 7477। अब्दुल्ला बिन अब्बास से अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी नेक काम का नतीजा, यानी किसी नेक काम के नतीजे में जो शोहरत का तालिब हो, अल्लाह ताला इसकी बदनीयती कयामत के दिन सबको सुना देगा। इस तरह जो कोई लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करेगा, अल्लाह भी कयामत के दिन इनको सब लोगों को दिखा देगा। बड़ा डरना चाहिए, और याद रखे ये नहीं छुपता। नियत एक ऐसा अल्लाह ताला ने अंदर छुपा कर डाल रखा हुआ बीज है, ये खोटी होती है ना, दुनिया देखती है बाद में। ज़िंदगी में ना भी हो ना, आपके बाद आ जाएगा, लोग कहेंगे ये फलां जो था ये ऐसे ही था, बज़ाहर बहुत नेक लगता था लेकिन नेक नहीं था। और अल्लाह ताला आपको मुझे कभी इसकी तौफीक भी ना अता फरमाए। इसी तरह से आप देखिए कि ये जो टॉपिक है इस पे हमें ख़ुद पे गौर करना है, क्योंकि ये कोई दूसरा नहीं देख सकता। अल्लाह ने नियत को इसीलिए तो छुपा दिया कि किसी और से बात ही ना हो। और वो हदीस भी आपने सुनी होगी बुखारी की 2810, आपने फरमाया एक शख्स ने कहा एक शख्स जंग में जाता है ताकि नामवरी भी हो, कुछ बहादुरी की धाक भी, और साथ साथ अल्लाह के दीन को भी फ़ायदा हो। फरमाया ये उसका अमल अल्लाह के लिए नहीं है, सिर्फ एक इरादे से जंग में शरीक होना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। मैं इस हदीस पे जब भी आती हूँ दिल कांप के रह जाता है, अल्लाह ताला कैसे अपना मुहासबा करे। देखिए ना, जब आप एक काम करते हैं और मुस्तकिल करते हैं, आदत बन जाती है, कभी कभी आदतन भी आप वो नेकी कर रहे हैं। जिस दिन घर से निकले, जब निकले, आप पढ़ने आ रहे हैं ना, आप क्यों पढ़ रहे हैं भले, आप पता है आपको, हियल कलिमतुल्लाहिल्लुल्या, आपके अल्लाह मैं एक मुसलमान शहरी हूँ, मैंने इस्लाम सीख कर, इस्लाम पे अमल करके इस्लाम के झंडे को बुलंद करना है। अब आप और मैं किसी मैदान जंग में तो नहीं निकल रहे ना, और अल्लाह ना करे इसकी नौबत आए, आप मैं हर एक मुआशरे में चलते फिरते एम्बेसडर ऑफ इस्लाम है। इसके लिए कोशिश करनी है, और बाकी इसके अलावा सब दूसरी बातें। और याद कीजिए वो रिवायत भी आपने शायद सुनी होगी, अबू मसूद अल अंसारी कहते हैं कि जब सदके की आयत नाजिल हुई तो हम बोझ ढोने का काम करते थे, यानी मजदूरी करते, ताकि उसके बाद कुछ पैसे मिलें और सदका कर दें। एक शख्स जिनका नाम था, आप सब उनसे मिल चुके हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आए, और उन्होंने सदके के तौर पर बहुत सारी चीज़ें दी, खूब ज़्यादा माल दिया। इस पे कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो देखो रियाकार है, दिखाने के लिए इतना माल दे रहे हैं ताकि वाह वाह हो जाए। इतनी ही देर गुजरी कि एक शख्स बेचारा अबू अकील, गरीब सहाबी, क्या किया था इन्होंने, सारी रात एक यहूदी का कुआं चलाया और एक सा किलो कह लीजिए अपनी जुबान में खजूरें ली, और लाकर जब ये खजूरें देती देखी तो मुनाफिक, और देखो जी ये चले रोम को फतह करने और खजूरें मुट्ठी भर, उस पर भी बातें छांटी। ज्यादा देने वाले को रियाकार कह दिया, थोड़े देने वाले के कहा अल्लाह को इसके सदके की क्या जरूरत है। इस पर वो आयत नाजिल हुई थी सूरह तौबा 89, वो लोग हैं जो मोमिनों पर ऐब लगाते हैं, जो सदका ज्यादा देते हैं उन पर भी, और जो मेहनत से कमा लाते हैं उन पर भी। और बुखारी में ये रिवायत आप खुद भी पढ़ सकती हैं 1415। तो बात लोग अच्छा करने वाले को भी बुरा ही कहते हैं, बुरा करने वाले को तो पता नहीं वो क्या कहते होंगे। और वो हदीस आपने सुनी है, जिन तीन लोगों से जहन्नुम की आग सुलगाई जाएगी, उसमें से एक रियाकार, सारी रियाकार हैं बेसिकली, कारी है तो रियाकारी के लिए, सखी है तो रियाकारी के लिए, और तीसरा शहीद है तो रियाकारी के लिए। तो कितना सख्त मेयार है, और वाकई अंदर बाहर की इसलाह किए बगैर इस रास्ते में कूदना ये आसान नहीं है। और ये जो वलीमे किए जाते हैं बड़े बड़े सुन्नत के नाम पे, उसकी हदीसें मेरे ख्याल कुछ 10 हदीसों के हवाले हैं, मैं एक बोल देती हूँ जो भी आपको याद है तो लिख लें। अबू दो 3745, एक शख्स था अब्दुल्ला बिन उस्मान, कहते हैं कि मैंने एक काने शख्स से सुना जो कबीला सकीफ में था, और भलाई करने की वजह से लोग उसको मारूफ कहते थे, मारूफ मीन उर्फ से नेकियों वाला। खैर इसका नाम जहीर बिन उस्मान नहीं तो कुछ भी, खैर वो कहते हैं कि उस शख्स ने कहा, हदीस यहाँ से शुरू होती है, वलीमे के पहले दिन का खाना हक है और दूसरे रोज़ का खाना नेकी है, लेकिन तीसरे दिन के बाद रियाकारी और नमूदो नुमाइश है। बात समझ गए, भारी दावतें, और सिर्फ नाम लेना खिलाने पिलाने का नहीं, ऐसा नहीं है। और कहते हैं मुसैद बिन मुसैब के पहले दिन दावत की तो उन्होंने लोगों कबूल कर ली, दूसरे दिन कबूल की, तीसरे दिन फिर उन्होंने किसी की दावत की तो उन्होंने कहा नहीं ये तो नमूदो नुमाइश की दावतें हैं, मैं इसको कबूल नहीं करता। फिर इसी तरह से आप देखिए अल्लाह के नबी की एक रिवायत मिस्तवर बिन शिद्दात से, जो शख्स किसी मुसलमान भाई का ऐब जिक्र करके एक नवाला खाए तो अल्लाह ताला इस शख्स को दोजख से इसी कदर नवाला खिलाएगा, और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब जिक्र करके एक कपड़ा पहनेगा तो अल्लाह ताला इस शख्स को दोजख से इसी कदर कपड़ा पहनाएगा, और जो शख्स किसी शख्स को किसी वजह से रियाकारी और तशखीर के मुकाम पर पहुंचाए तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसे वहीं खड़ा करेगा जहां पर इसकी अच्छी तरह से शोहरत हो। यह अबू दाऊद की रिवायत है 4881। सोच के बोले, बिलीव मी, लोगों को ऐसे ना डिस्कस करें, आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे अगर आप लोगों के अंदर लोगों को डिस्कस करते रहें। और मैंने एक चीज़ इतनी फ़ायदेमंद पाई है, एक दो लफ्ज़ों की हदीस है, नजा मन समत, चुप रहना खामोशी, ये बेहतरी है। खामोश रहा जो या कामयाब हो गया, निजात पा गया जो चुप रहा, चुप रहे, काम बोले, जिक्र करते रहें, अस्तगफार करें, अपनी ड्यूटी पे बैठे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह के साथ मामला चल रहा हो उसी तरह की दुआएं मांगते रहिएगा। बहुत बोलने वाले बहुत गलतियां करते हैं, तो पक्की बात है जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा गलतियां करेगा। और आपको पता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जुब्बे हुजन से पनाह मांगो, जुब कहते हैं कुएं को, हुजन गम, गम के कुएं से पनाह मांगो। पूछा अल्लाह के नबी ये क्या है, फरमाइए ये जहन्नम का एक नाला है जिससे जहन्नम दिन में 100 बार पनाह मांगती है। कहा अल्लाह के नबी इसमें कौन लोग दाखिल किए जाएंगे, फरमाया वो कारी जो अपने अमलों में रिया करते थे, और बदतरीन कारी अल्लाह के आगे वो हैं जो उमरा की तरफ चलते फिरते हैं, यानी बादशाहों के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर उनकी शोहरतें हैं। मुराद क्या है कि जालिम हुक्मरानों के आगे पीछे, इब्ने माजा की रिवायत है 256। बहुत डरने की ज़रूरत है, बुरे काम करके तो जहन्नुम में गए, अच्छे काम करके जहन्नुम में जाना है हमने, अल्लाह हम सबको इससे बचा के रखे। और रिया को शिरक असगर भी कहा जाता है, अहमद की रिवायत है 2436। मास बिन जबल कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जिहाद 2 किस्म का है, एक वो जो रज़ाए इलाही के लिए किया जाए, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, कौन सा, जिसमें इमाम की इत्तबा की जाए। ये आज के दौर में बहुत सारे लोगों का सवाल है, आज के दौर में ये जिहाद है, ये फलां जिहाद है कि नहीं, पूछते हैं ना लोग कई सवाल, तो याद रखिए जिहाद इमाम की इमामत के बगैर नहीं है, आपके मेरे करने का काम नहीं है ये। आज भी याद रखिए इज्तमाईयत को तोड़कर अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, उस लिहाज से इस चीज़ को सामने रखें। फरमाया जिहाद एक है, नंबर एक रज़ा अल्लाह की, बट इमाम की लीडरशिप में, इसमें राह इलाही में बेहतर से बेहतर माल खर्च किया जाता है, साथी के साथ भाईचारगी और मोहब्बत की जाती है, शर और फसाद से परहेज़ किया जाता है, यानी जब कोई काम अल्लाह के लिए होता है तो फिर साथ ये सारी चीज़ें खुद ही मिलती हैं। ऐसे शख्स का सुनिएगा, इस किस्म के जिहाद में सोना जागना तमाम इबादत है। आप थोड़ा सा इस पे लें। अल्लाह करे कि अल्लाह उन सारे अंसार अल्लाह को इसमें शामिल कर लें जो इस जद्दोजहद में साथ है। मैं उनके लिए रात दिन दुआ करती हूँ। आप देखिए कि आप सोते भी इसलिए ना कि सुबह जल्दी उठना है, और सुबह सारा दिन काम इसलिए कर लिया कि रात को आराम कर ले। सोना जागना भी अल्लाह के हाँ आपका सदका लिखा जा रहा है, क्योंकि आप उसके दीन की बुलंदी के लिए काम करें। आप कल जाके झंडे उठाने पड़े, तीर तलवार उठाने पड़े, वो तो कल की बात है। आज आप लोग, आपके हाथ कलम चल रहे हैं ना इस वक्त, यहाँ जब आते हैं कागज़ कलम लेते हैं, बैठते हैं गाड़ी में बैठते हैं, वल्लाही 2 सेकंड चले, 10 सेकंड, 1 मिनट के अंदर अल्लाह से बातें किया करें। अल्लाह जी मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट ठीक हों, मैं और अच्छा सीखूँ, कमी पेशियाँ दूर करूँ, मेरे अंदर के ऐब दूर हों, ताकि मैं आपके दीन को सर्व करूँ। आज अगर आप नियत करते हैं ना कि आपने अंसारुल्लाह बनना है, ये हदीस आपको बता रही है, मैं नहीं बोल रही, आपका फिर सोना जागना भी इबादत है। ये है कुल इन सलाती व नुसुकी व माहया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। मोमिन कभी पार्ट टाइम मोमिन नहीं हो सकता, मुजाहिद कभी पार्ट टाइम मुजाहिद नहीं होता। और इसके बाद अगली अपोजिट थिंग, पहला जिहाद तो अल्लाह के राह का था ना, और दूसरी जिद्दोजहद जो अपनी बड़ाई के इजहार, अपना रुतबा दिखाने और सुनाने के लिए हो, और अपने अमीर की नाराज़गी और ज़मीन में फसाद और शर फैलाना मकसूद हो, तो ऐसा आदमी कुछ भी लेकर नहीं आएगा। यह अबू दाऊद की रिवायत है 2515, और हाकिम फिल मस्तदरक, यानी हाकिम की जो किताब है उसमें 85 नंबर की रिवायत है, पार्ट 2। कितना खौफनाक बात है। तो हमेशा याद रखें, इज्तमाईयत को कायम रखते हुए अल्लाह के रास्ते में भाग दौड़ करें और जाएं दुनिया से। आप इंतज़ार करें अपने दुनिया से जाने का कि मैंने अपना हिस्सा डाल दिया, अल्लाह बाकियों से ले ले। सुरखरू हो जाएंगे, आज मरें कल सब खत्म, चूंकि मेरी ज़ात थी, मेरे ज़ात पे था। याद रखिए, रियाकारी खुद नहीं पता चलती, लेकिन ये जो वन मैन शो का लफ्ज़ आपने कभी सुना है ज़िंदगी में, इधर बंदा मरा काम ख़त्म होता है ना। अच्छे भी काम बुरे भी काम, जहां भी आज भी आप अगर पूरी दुनिया में देखिए मुसलमानों को, सबसे ज्यादा बड़ा सदमा तो उम्मत पे नबी सल्लम की जाने की बात थी ना। आपके बाद जो सहाब खड़े हो गए, ये सच्चाई की दलील थी। वजल लिसान असदकिन फिल आखिरीन, क्या कहा हजरत इब्राहिम ने, अल्लाह मुझे नेकों का साथ दे, रब्बी हबली हुक्मन वल्हिकनी बिस्सालिहीन वजल्ली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन। ये दुआ मांग के जाएं दुनिया से, अल्लाह ज़िंदगी में मुझे नेक साथी दे, और जो दे दिए मैं उस पर खुश हूँ, वो जैसे भी है मेरा यही नसीब थे, मुझे ज़्यादा नेक नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छे इतने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इससे बहुत स्किल्ड नहीं चाहिए कि इनको निकाल कर दूसरों को ले आऊँ। यकीन करें मैं अपने अंदर इस चीज़ की इतनी हिरस पाती हूँ कि एक बंदे से कभी एक दफ़ा सलाम भी हो गई है ना, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इट्स माई वीक पॉइंट। एक वो वक्त था कि 20 लोग क्लास में होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 200-300 लोग हैं जिनके साथ वर्ल्ड वाइड सिर्फ एज एडमिन काम होता है, लेकिन मुझे उन सब के नाम उंगलियों की पोरों पे याद हैं जिनके साथ मैंने जहाँ भी फर्स्ट हैंड काम किया, करवटों में अलाक जुनूबी हैं, वाह करवटों में उनके लिए दुआएं हैं। और इस ट्रिप में मैं इस बार में इतनी ब्लेस्ड हूँ, USA का ये ट्रिप मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन ट्रिप है, क्योंकि मुझे अपने सारे प्यारे मिले हैं और कुछ मिल जाएंगे और भी, और इतनी खुशी होती है ऐसे क्या कोई सगी बहन भाई और अपने खून के रिश्तों के मिलके। क्यों? कि ये बुनियादों में लोग थे, इनको मैं नहीं छोड़ सकती, वो मुझे छोड़ जाएँ, वो छोड़ जाएँ से मुराद ये होता है ना कि बेटियाँ घरों में गई तो मैके को भूल जाती हैं, कभी अपनी मसरूफियात हैं, महीनों बारी बात ना हो, आई डोंट माइंड इट, वो अपना हिस्सा डाल गए और उसको नहीं छोड़ना। और इस शहर में आप हैं अपने हिस्से लेने वाले, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपके नाम कभी भी ज़िंदगी में भूलेंगे। अगले सालों में देखिएगा कितने कोर्सेज आएंगे, आपका ये स्कूल इतना तो नहीं रहना, ये मेरी दुआ है आपको, ये इससे 70 गुना बढ़े, अल्लाह करे इससे भी 700 गुना पे बढ़े, इसकी गली कोने कोने में कुरान की गलबे और इस्लाम के लिए काम हो। आप डिसिप्लिन के साथ तरीके के साथ काम करें, अल्लाह पूरे शहर में कुरान का नूर भर दे। हमने और क्या लेना देना, हमें झंडे नहीं लगाने, हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन काम तो करना है ना। तो अब आप देखिए कि ये हदीस ने मुझे इमोशनल कर दिया कि या फिर अल्लाह के दीन के बुलंदी के लिए कर रहे हो या अपने झंडे लगा रहे हो, दोनों में दो मुख्तलिफ इंजाम है। अल्लाह ताला हमें आपको रियाकारी और दिखावे से बचाए। और मुस्नद अहमद की रिवायत 126, शद्दाद बिन औस से, فرمایا اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اللہ کی بنا نماز اور شرک. اور ومن ساما یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا اور شرک کیا یعنی دکھاوے کے لیے، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور صدقہ کیا تو دکھاوے کا کیا. اور وہ جو طویل حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا حوالہ لکھ لے، پڑھی وہ ہے بہت پیاری، آپ کو اس میں بھی مل جائے گی. ہر تفہیم و سنہ کتاب کے شروع میں تین لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اور اس بلکہ جو میرے سامنے اس وقت حدیث ہے وہ تو بہت لمبی ہے اور اس میں اتنا کچھ ہے، لیکن ابھی میں اس پر زیادہ وقت دے نہیں سکتی. مسلم کی روایت خود جا کے صحیح مسلم میں پڑھیے 4923، کس طریقے سے اللہ قیامت کے دن سوال جواب کرے گا. کیوں نہ ہاتھ ٹھنڈے ہوں، کیوں نہ حضرت عیسیٰ اسے گھبرا رہے ہوں، کیوں نہ اسے انبیاء کرام نفسی پکاریں، کیونکہ نیک کام کرنے والوں سے اس حدیث میں سوال جواب ہو رہے. ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، کمن کیوں کیا تھا، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا، کر کیوں رہے تھے. اور حضرت عمر کی حدیث انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث، سورت فتح کو دیکھ لیجئے پہلی آیت، صحیح مسلم 1907. اور آخری بات کر کے آگے چلی جاؤں گی، مسلم 7475، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں. جو آدمی کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے علاوہ میرا کوئی اور شریک ہو تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ٹیک اٹ. اللہ کو شراکت نہیں پسند، تو اللہ میری آپ کے اعمال کے کھوٹ اور کمی بیشیوں کو دور کر دے. اگلی بری چیز جو حقیقت میں آج امت کو ڈس رہی ہے، جس پہ تو واقعی پھر بڑا گرج ہے دل میں، اور وہ سستی ہے، عاجزی اور سستی. آج امت سست پڑی بیٹھی ہے، آج عاجز بیٹھے، ہم کہتے ہیں مجبوری بڑے ہیں، دکھی بڑے ہیں. آپ کو ہمارے غم نہیں پتہ، آپ کو ہمارے مسئلے نہیں پتہ، آپ کو پرابلمز نہیں پتہ. کیا پرابلم ہے آپ کا، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا؟ چار دن بعد کہیں جانا ہوتا ہے، ہم 8 دن پہلے اس سے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں. 6 ماہ بعد شادی ہوتی ہے، ہم پہلے سست ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہم نے دین کو دینا ہے، یہ سیکھا ہے ہم نے. یاد رکھیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی لیکن آپ اس کو یاد کریں. میں نے اس لیے نہیں ڈلوائی نوٹس میں کہ لمبی دعا ہے، صبح آپ کے دعاؤں کا اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن دعا آپ سب میں بولتی ہوں تو آپ کو سمجھ یاد آ جائے گی. اللہم انی اعوذ بک من العجزی والکسلی والجبنی والبخلی والحرمی والقسوتی والغفلتی ولیلتی والذلتی والمسکنہ، یعنی اس میں 10-12 چیزیں ہیں. حوالہ لکھ لیں تو پھر آپ بعد میں اس کو لکھیں، اگر دے دیں ان کو، اس کا اسائنمنٹ میں ڈال دیں یہ دعا، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں گے، تو باقی آپ پھر خود لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی دے دیں گے تو اردو لکھ لیں گے، اردو دیں گے تو عربی لکھیے گا. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، آپ سب پہ آمین کہے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں عاجزی سے اور سستی سے، بزدلی سے، قرض سے، بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، ارزل عمر، سختی اور غفلت سے، ذلت اور ناداری سے، اور تیری پناہ مانگتی ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے. یہ مخالفت کیا ہوتی ہے؟ دین کی مخالفت، اللہ اکبر. پھر اگلی چیز نفاق سے، بری شہرت سے، دکھاوے سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں بہرے پن سے اور گونگا ہونے سے اور پاگل پن سے، کوڑ ہونی سے یعنی لیپرسی، اور برس سے اور تمام بری بیماریوں سے. کتنی جامع دعا ہے، کتنی چیزیں گنی ہم نے، گن رہے تھے آپ لوگ؟ کم از کم 15 چیزیں. یہ الحاکم اور بیہقی کی روایت الجامع میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مختصر ورژن بھی ہے صحیح مسلم 6873. اللہم انی اعوذ بک من العجزی والکسلی، کسلی والجبنی والحرمی والبخلی، واعوذ بک من عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات. یہ تو آپ لوگوں نے کئی دعاؤں میں یاد کی ہوگی، تو یہ بھی دعا موجود ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، عاجزی اور سستی کس لیے، کیوں چھوڑوں؟ کوشچن ہے، بڑا اہم سوال ہے، پہلے اس کو ابزارب کریں. میں عاجز ہوں، میں سست ہوں، پر میں کیوں چھوڑوں، مجھے کیا چاہیے؟ سابق الى مغفرت من ربکم و جنت نردھا کرد السماوات والارض، کرد السماء والارض، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. کیا پتہ چلا, سورہ حدید کی آیت 21 ہے, سستی چھوڑیے جنت کو پانے کے لیے. اللہ کے نبی کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, آپ نے کہا حیرت ہے اس شخص کے حال پہ جو جنت بھی طلب کر رہا ہے اور سو رہا, اور جہنم سے بچنا بھی چاہ رہا ہے اور سو رہا. اپنے آپ سوچیے, اس پہ میں نے ایک پورا بلکہ ایک رکھ دیں, چلے آپ کو لیکچر ہے, آپ کو تو ماشاء اللہ 25-30 نئے ٹاپکس آ رہے ہیں اگلے دنوں میں, اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کتنا بڑا میرے اوپر احسان ہے ان لوگوں کا جو ٹرپ فائن کرتے ہیں, مجھے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. کل ہم گن رہے تھے شاید 25 نئے, 21 کتنے, اب اور بھی ہو گئے, کل سے شروع ہو رہے ہیں ٹاپک. میں دیکھیے, میں صرف یہ باتیں آپ کو دکھاوے کے لیے نہیں بتانے لگی, آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا, آپ میرے ساتھی ہیں, آپ اپنے آپ کو میرے ساتھ کسی لیول پہ رکھیں. کل صبح فجر سے پہلے گھر سے نکلنا ہے, اور ایک ہوتا ہے آپ یہاں سے گئے کہیں نکلے اتر گئے, بلیو می اٹس ویری ایزی, ہر دن سفر ہے. کل اس وقت تک ایک درس میں رہ لے ہم, اب اللہ کو پتہ کل کیا ہوگا زندگی, لیکن پلان یہی ہے یہاں سے لے کل. آج صبح سے سوچ رہی ہوں, آج صبح بھی ہم 4:30 بجے کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں یہ سوچ کے, اور کل جانا ہے, اور پتہ نہیں تنکا تک نہیں کھول کے رکھا کہ کیا رکھنا ہے, اور ہر دن سفر ہے, ایک رات دو ادھر ایک ادھر, اور میرے حال 20 سے لے کر 25 درس تو لکھ لیے, اور اس میں 2-4 ایڈ ہوں گے, یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں. سستی اور عاجزی, سستی کا علاج سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ الگ بات ہے, سستی کی وجہ سے اس ٹاپک پہ آج تک بات ہی نہیں. تو بہرحال یہ بہت پیارا ٹاپک ہے, میں اس پہ بہت دکھی ہوں. یعنی یہ چیز ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال تو آج سے 100 سال پہلے رو گئے نا کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تنہا سانی. آج ہم نے اپنے بچوں کو سست کر دیا, ایزی گوئنگ ہو گئے ہیں. تو بہرحال سستی چھوڑ دیجئے, کس کے لیے, جنت کو لینے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. آج ہم کب چست ہوتے ہیں, آج عموماً ہم سستی کب چھوڑتے ہیں, سیل لگی ہو, کوئی پیارا ملنے آ رہا ہے, آدھی رات کو ایئرپورٹ پہنچنا, قیام میں کھڑے ہو جائیں گے, پتہ ہے کہ اندر سے آنے والے کو 2 گھنٹے لگنے ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سے, نہیں شاید جلدی آ جائے, شاید جی ہو جائے, برا لگے گا, ویٹ کریں گے, اور قوم للہ قانتین کی بجائے قوم لل مہمانوں کے لیے قانتین کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال ثواب ہے تو اٹس گڈ, اچھی بات ہے. آج ہماری ساری سستی دین کے لیے, ہم عاجز تو دین کے لیے, یعنی اس پہ تو مجھے نہ بلوائیں, پوری سورت توبہ پڑھا دوں اس پہ, جس کو اگر یہ سستی دور کر, سب سے زیادہ آنکھوں میں چمک اور رونق یہ دیکھ کر, نوٹ نوٹ نوٹ. آج ایک آفر ہے ہمارے پاس نیکی کی, ہے سب کو نہیں دینی, آپ میں جس کے پاس وقت ہے اگر آج, اور آپ کو پھر بعد میں روکنے سے پہلے بھی بتا دوں گی, جو رک سکیں وہ الگ ہو جائیں بعد میں, لیکن جو جائیں وہ چلے جائیں, نو پرابلم, ان کو کل بتا دیں گے. یعنی ایک از اے ڈفرینٹ اسٹوری, ویری ایک یونیک اپرچونیٹی ہے, لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ سستی عاجزی ختم ہو جائے گی اس کو سن کر. ٹھیک ہے, تو جو آج رہنا چاہیں وہ بعد میں رکیں گے تو ان کو تھوڑا سا ہم موقع دے دیں گے, اور کوئی چلا جائے تو کوئی ڈونٹ وری, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اوکے, تو سستی چھوڑ دیجیے, میں کہتی ہوں صرف دس از دا ون ٹائم تھنگ. اب سوال پیدا ہوتا ہے سستی چھوڑ دی تو کیا کروں, ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں, کیونکہ میں نے سستی چھوڑ دی, سستی چھوڑ دی, میں کدھر گئی, وائی ویئر آئی ایم رننگ, ففرو الی اللہ فائنۃ تسخبون, یہ ہے اصل کوشچن مارک. آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جنت کی روڈ کون سی ہے. یقین کیجئے کہ اس وقت اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر ہمیں سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت, کہ دین کا مزاج کیا ہے, اتنوں سے اتنا دین کیسے پھیلا, 313,000 کے پہ کیسے چلے گئے, اللہ کے نبی دنیا سے گئے مکہ مدینہ اور حجاز تک, تبوک تک سرحدیں پہنچی تھی اسلام کی, اس کے بعد ادھر ادھر کیسے گیا, لیڈرشپ, اور کیسے صحابہ کرام, کتنے زیادہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام, پڑھ کے تو آئیں, اب تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو گیا نا, کس طریقے سے وہ اپنی رائے کو دبا لیتے تھے صرف اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے. ان کو لگتا تھا ہماری بات صحیح ہے, لیکن اللہ کے نبی آپ سچے نبی ہیں, ہاں تو پھر آپ ڈر کیوں رہے, پھر دب کیوں رہے, اللہ کے نبی یہ فتح, اللہ کے نبی گھر سے تب یہ کہہ کر آئے تھے عمرے پہ جا رہے ہیں, تو کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اس سال جا رہے ہیں. یعنی آپ مزاج سمجھیں, صحابہ کا مزاج یہ تھا, ٹھنڈا, کھڑے ہو جاؤ, اسٹاپ, کف وائی دی یعقوب, 13 سال تک ایک جھڑپ نہیں آپ کو مکی زندگی میں دکھے گی. بعد میں وہی لوگ, خالد بن ولید تو چلا دیر سے آئے, अली जैसे लोग डे वन से कह लीजिए इस्लाम में थे ना, 13 साल में कोई एक खबर कि मक्का की किसी गली में जाके अली ने किसी के साथ घुत्तम घुत्ता कर दी, एक हुक्म था कुफ हुई थी जकुम, अभी हाथ बांधे रखो, रुके हुए थे, और जब हाथ खुले तो यही अल्लाह के शेर बन गए। ये मिजाज नहीं आज उम्मत का, इसलिए नहीं बन रही। याद रखिए एंड ऑफ द डे हम पहुंचेंगे कहाँ, दिस इज द मेन थिंग। आप हाई रोड हाईवे लीजिए, शॉर्ट वे लीजिए, नेविगेटर ले ना ले, इट्स ओके, बट वट वेयर यू विल बी स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द डे। कहानी ये है, हम कोशिशों को स्कैटर्ड करते हैं, और आप देख लीजिए अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। तो अगली चीज़ सुस्ती के बाद है गफलत, अल्लाह अकबर। इस पे मैंने अभी साल पाकिस्तान जब गई थी, ये लास्ट फेबरवरी का ट्रिप था, 3-4 टॉपिक दिए थे गफलत पे, है मैंने फोल्डर में भी देखे हैं, इंशाल्लाह एडिटिंग के बाद अल्लाह ने चाहा सामने आएंगे। गफलत इस वाकई अपनी जगह एक गफलत सेमिनार की ज़रूरत है, और लेकिन मैंने उसको कोशिश किया था कि जब भी जमा करें तो वो वाकई एक चीज़ बने। तो गफलत क्या है? गाफला, कौन गाफिल है, किससे गाफिल है? सूरत आराफ 179 अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरा मिनल जिन्नी वल इंसी। हमने कितने ही इंसानों और जिन्नों को पैदा ही दोज़ख के लिए किया है, क्यों भाई? लहुम कुलूबु ला यफ़क़हून बिहा, इसलिए कि दिल तो हैं पर उससे तफक्कुह का काम नहीं लेते। वलहुम आयुनु ला युबसिरून बिहा, आंखें तो हैं लेकिन देखते नहीं उससे। वलहुम आज़ानु ला यस्मऊना बिहा, कान तो है लेकिन सुनते नहीं, क्यों? उलाइका कल अनाम, ये तो चौपायों की तरह, बल हुम अदल, ये बल्कि उससे भी भटके में, यानी कैटल्स को चौपायों को तो फिर भी पता है पैदा करने वाला कौन है, वो तो शिर्क नहीं करते, लेकिन इनका हाल के, उलाइका हुमुल गाफिलून, ये गाफिल हैं। सूरत आराफ 179 आयत है। तो असल गाफिल वो है जो मकसद हयात से गाफिल है, और गाफिल वो है जो आँखों कानों और दिल जुबान का सही इस्तेमाल नहीं करता। अगली किस्म गाफिलों की कौन है, लिस्ट बन गई, गाफिल कौन, ये सवाल असाइनमेंट में आएगा आपको। गाफिल कौन? नंबर एक जो आँखों कान दिल जुबान का इस्तेमाल नहीं करता। अगली चीज़ दुनिया की ज़िंदगी पे राज़ी होने वाले गाफिल हैं, जो आखरत को बेच बाच के सिर्फ दुनिया के पीछे रो रहे हैं। सूरत यूनुस 7:8, अल इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिकाना वरदू बिल हयात दुनिया, यकीनन वो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद ही नहीं रखते जो दुनिया की आरजी जिंदगी पे राजी हो गए। वतमन्नु बिहा, और उसमें मुतमईन कितने, क्या गोल है इनकी जिंदगी का, बच्चे पैदा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, मॉन्टिसरी में जाने लग गए गुड, और अच्छे से स्कूल में दाखला मिल गया गुड, और कॉलेज में गए गुड, कैरियर बना वेरी गुड, रिश्ता आया एक्सीलेंट, धूम धाम से शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर बच्चे लेकर वो हंसी खुशी रहने लगे। ये है वतमान नबीहा। आज उम्मत मुस्लिमा की मेजॉरिटी इसी इत्मीनान से जी रही है, शुक्र है हम कामयाब हैं, घर भी अब अपने बनने लग गए हैं, एक का लिया था अब चार के ले रहे हैं, सबकी किस्तें दे रहे हैं ताकि सब आराम से, इनके बच्चों के बच्चे भी खुश रहें। सुभान अल्लाह। फरमाए वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, सिर्फ गफलत है तो एक हमारी आयतों से गाफिल है, और कोई चीज़ से गाफिल नहीं। स्टॉक एक्सचेंज पे इनकी नज़र, डॉलर रेट पे इनकी नज़र, और जो दुनिया के फ़ायदे इनके, माशाल्लाह ये तो सबसे पहले पहुँचते हैं उधर, ये कोई ऐसे तो नहीं बेकार, अकल बड़ी है, लेकिन अल्लाह की आयतों से गाफिल। पढ़ा कुछ नहीं, नहीं आता पढ़ना, नहीं आता समझना, नहीं आता अभी, याद किया कुछ नहीं, अभी कुरान का हक नहीं दिया, कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफ़ बड़े हैं, बिजी बहुत हैं, भाई आपकी गफलत के क्या कहने। अल्लाह कहते हैं उलाइका मावाहुमुन्नार बिमा कानू यकसिबून। अगली दलील नोट कीजिए, कौन है गाफिल जो दुनिया की चक्का चौंद में खो गया? सूरत रोम आयत 7, यालमून ज़ाहिरुम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरतिहुम गाफिलून, वो दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाहिर पे खो गए, यानी दुनिया का भी ज़ाहिर छिलका, बिलीव में आज लोगों ने दुनिया का भी छिलका ही लिया, जैसे समझिए कि क्या क्या बोलते हैं उसको, अल्लाह हो, अखरोट है, छिलका अच्छा कि गुदा अच्छा, गुदा अच्छा होता है ना, ऐसे ही है ना, एलमंड्स बादाम, छिलका लेंगे कि गुदा, اللہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا کا بھی گودا نہیں لیا، دنیا کا بھی ظاہر من الحیات، دنیا کا بھی صرف اوپر کا ہی چھلکا لیا، یعنی دنیا میں بھی ظاہر پرست ہیں، کوئی دنیا کے بھی کوئی کام کے سودے نہیں یہ کر رہے، بیکار سودے ہیں، اور آخرت سے تو غفلت ہیں، پردوں میں پڑی ہوئی آخرت۔ نیکسٹ نمبر لسٹ میں کون ہے غافل؟ بے وقت نماز پڑھنے والا غافل ہے۔ صحیح مسلم 1412، ایک راوی بیان کرتے ہیں، اعلیٰ بن عبد الرحمن نام ہے ان کا، وہ اپنے گھر میں ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، بسرا میں حضرت انس بن مالک کے گھر گئے، وہ گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا۔ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں، ابھی تو ہم ظہر کی پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی نماز پڑھ لو۔ ہم کھڑے ہوئے، عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، ذرا سا سنیے گا، اور عصر کی نمازیں آج ہمارے انڈو پاک کلچر میں سب سے زیادہ ذبح ہو رہی ہیں، فرمایا، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان یعنی ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر چار ٹھونگے مارتا ہے۔ چار ٹھونگے کیا؟ چار رکعت، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ تو عصر کی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھنے والا غافل ہے۔ اگلا غافل کون ہے؟ کھانے پر اللہ کا نام نہ لینے والا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے گھر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لے، یعنی لینا چاہیے۔ جب لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے، آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ تو رات گزارنے کی جگہ ملی اور نہ کھانا کھانے کی جگہ ملی، یعنی ایسے بندے کو اس میں سے جگہ نہیں ملی۔ اور جب کھانا کھانے پہ اللہ کا نام لے تو شیطان کہتا، نام نہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہیں یہاں جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 5262۔ اگلا نمبر کون غافل ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا، نصیحت کو غیر سنجیدگی سے سننے والا۔ کھیلتے کودتے نصیحت کی باتیں سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے اڑا دی۔ اس کی دلیل الانبیاء پہلی چار آیتیں، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ میں نے اپنے ابتدائی ادوار جب کبھی درس دیے اس ایک آیت پہ بے شمار درس دیے، یعنی چند آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ کو اپنا بچپن لگتی ہیں، تو آپ کا علمی بچپن ان آیتوں کے ساتھ جڑا ہوگا کہ غفلت میں قریب آ گیا لوگوں کی کہ حساب کا وقت، لیکن ابھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بنا۔ نیکسٹ پرسن کتنے ہوئے ہیں ٹوٹل؟ سکس، سیونتھ پرسن، اللہ کی یاد سے غافل خواہشات کی پیروی کرنے والا۔ سورۃ کہف 28، ولا تطی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ تم ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ ایک لیکچر انشاءاللہ یہ کمنگ ٹرپ کے اندر آئے گا، سول ورسز سیلف، سیلفی کلچر، یہ ساری آیتیں اس میں آ جائیں گی، کیا آج خواہشوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ پھر اگلی بات ہے، غافل ایمان نہیں لاتا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ روایت ہے صحیح مسلم کی 7181، تفصیل جا کے پڑھ لیجئے گا، اور وہی حدیث ہے جو قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا، اور ایسے لوگوں کے پوری حدیث کے جو اینڈ پہ آپ سے اس ٹاپک سے متعلق لفظ ہے سن لیجئے، فرمایا، سورۃ مریم کی آپ نے پھر روایت پڑھی کہ لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ ہوگا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یعنی اشارے سے کہ اس دنیا میں پڑے میں اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ صحیح مسلم کی روایت 7181۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کہیں میں تو غفلت میں نہیں ہوں؟ دیکھیے، غفلت میں ہوں اور آپ کی فلائٹ نکل جائے، غفلت کی ہو تو نماز چھوٹ جائے، یہ ممکن ہے؟ تو لکھیے وجہ، غفلتوں کے پردے کب بڑھتے ہیں؟ جمعے کی نماز چھوٹ جانے سے دل پر غفلت کا پردہ پڑتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2002، हज़रत अबू हुरैरा से अल्लाह के नबी को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, लोग जुमे की नमाज छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह इनके दिलों पर मोहर लगा देंगे, फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे। क्या पता चला कि अल्लाह ताला को ऐसे लोगों को हिदायत देनी कोई नहीं है जो गाफिल होंगे। अब आप देख लीजिए, चाहे जॉब उसकी वजह बने या कुछ और बने, लेकिन गफलत तो गफलत है। फिर इसी तरह जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते और किसी महफिल से उठ जाते हैं, ऐसे गाफिलों को शर्मिंदगी होगी क़यामत के दिन। अबू दाऊद की रिवायत है 48:56 अबू हुरैरा से, जो शख्स किसी जगह बैठे और वहाँ अल्लाह का जिक्र ना करे तो क़यामत के दिन उसको शर्मिंदगी होगी, और ऐसी जगह बैठे यानी आराम करे और जिक्र ना करे तो अल्लाह ताला की तरफ से इसको शर्मिंदगी होगी। और अल्लाह के नबी की वसीयत है, एक तीन लफ्ज़ हैं सिर्फ उसमें, तिर्मिज़ी के अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा आपसे शेयर करूँगी, 3583। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लाजिम पकड़ो तुम तस्बीहो तहलीलो तकदीस को। तस्बीह क्या है? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तहलील क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तकदीस क्या है? सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और फरमाया इसको उंगलियों की पोरों पे गिनो, इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा और हुक्म होगा इनको क़यामत के दिन, और गाफिल ना हो जाओ कि भूल जाओगे तुम रहमत को यानी असबाब रहमत को। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 3583। तो इसमें जो अल्लाह के नबी की वसीयत है वो क्या है? गाफिल ना बनो। तो अल्लाह ताला आपको मुझे गफलतों से बचाए। देखिए, सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार कर अगर अल्लाह आज हमें एक नया मौका दे रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हमने इसको बेहतरीन तरीके से लेके जाना है। नेक्स्ट थिंग, गुस्सा। गुस्से के साथ अटलांटा का नाम मेरे जहन में क्यों आता है? क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम अपनी एंगर मैनेजमेंट का टॉपिक अटलांटा में किया था। एक सिस्टर थी अतीक साजिदा, उनके घर पे एंगर मैनेजमेंट हुई थी। जितनी मेरी वाजे थी उतनी बच्चों की भी थी, सारे पार्टिसिपेंट थे। कह लें वो एक कोर्स में हुआ था कोर्स, लेकिन एंगर मैनेजमेंट का मैंने जो वाकई वहाँ मैंने खुद फील किया था कि एक पूरा एसेंस दिया था। इसके ऊपर भी एक हम कर सकते हैं डिटेल सेशन, रिपीट करेंगे कभी दोबारा, गुस्से पे एंगर मैनेजमेंट। मेरे आले गुस्से में कोई आएगा ही नहीं। इसको पूरा फुल डे सेमिनार बनाएंगे फिर भी नहीं पूरा होगा, बिलीव मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज गुस्सों में पड़े हुए, हर एक भी तो गुस्सा आया हुआ हमें। तो पहली बात है, कौन है जो गुस्से पर काबू पाए? वो पहलवान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत 6114, अबू हुरैरा की रिवायत, फरमाया एक शख्स ने आकर नबी सल्लम से पूछा, यानी आप देखिए कि कैसी लाइफ बातें होती थी ना जो आज हमें मिलती हैं, कहने लगे आके अल्लाह के नबी मुझे कुछ नसीहत कीजिए। आपने फरमाया, ला तगदब, गुस्सा ना किया कर। उन्होंने फिर कहा कुछ और, सोच रहे होंगे चले ये तो हो गई, अब आगे चलें। आप बार बार उसको कह रहे हैं, ला तगदब, गुस्सा ना कर गुस्सा ना कर, तो आप भी गुस्सा ना कीजिए। अब सवाल पैदा हो कि आ गया गुस्सा, आ गया तो क्या करें? तो उसकी वजह, आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए तो गुस्सा दूर हो जाएगा। बुखारी की रिवायत है 6115, गुस्सा आए तो ये करें। दूसरी बात, वज़ू कीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि शैतान आग से है और गुस्सा शैतान की वजह से, तो गुस्से को यानी शैतान को आग से ठंडा करो। क्या गुस्सा आना ही नहीं चाहिए? आना चाहिए, खिलाफ हक चीज़ों पे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी जब कभी खुतबा इरशाद करते आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज़ बुलंद हो जाती, गुस्सा शदीद होता, गोया कैसे लगता कि आप हमें किसी ऐसे लश्कर से डरा रहे हैं कि जो हम पे हमला करने वाला है और वो बिल्कुल पास आने वाला है, और बिदत की बात आती तो आप मतलब कहते हैं कि सारे कामों में बदतरीन काम नए नए काम हैं। ये मुस्लिम की रिवायत में से सम चंक्स आपके सामने रखे हैं 2005। तो गुस्सा क्या है, आता क्यों है? तो उसमें मैंने सेमिनार में चार पांच बातें लिखाई थी, जिसमें एक क्या है कि बस माजी की तलखियाँ, आप जो बनना चाहते थे वो बन नहीं सके, गुस्सा आ गया। कोई ऐसा वाकया माजी का कि किसी ने आप पे खूब जुल्म किया और आप सहते गए, अब वो आपके अंदर गुस्से की बनगी डाल। और गुस्से की एक वजह यह है, हीरोइनें वो गुस्से में प्यारी बड़ी लगती हैं और अदाएं दिखाती हैं, तो और भी फिर मियाँ चाय बना के देते हैं और बुलाते भी खिड़की के अंदर से घुमा के। आप कहते हैं मैं किसी हीरोइन से कम हूँ, आज आप भी मुंह फुला के बैठ जाएं। मियाँ सब थके हारे आए, आप कहते चले, आप भी गुस्सा दिखाए, वो कहते नहीं तो ना सही, मैं जा रहा हूँ, आपको भी पता चलेगा मैं हीरोइन नहीं, एक आम औरत हूँ। तो ग्लैमराइज कर दिया गया गुस्से को, और बाज़ वजह गुस्से की माँ होती हैं। इसको पकड़ लो गुस्सा ना दे, ये गुस्से में बोल रहा है, ये गुस्सा गुस्सा, यानी इस पे पता है, इस पे मैंने एक वहाँ मिसाल दी थी, उसका हैंड जो है कि शिकारी जानवर, अगर आप उसको टेम कर ले तो वो आपके लिए शिकार पकड़ के लाएगा, और अगर टेम ना करें तो वो आपको भी खा जाएगा। गुस्सा शिकारी जानवर है, इसको अच्छी जगह इस्तेमाल करें, हक पे लाइए। गुस्सा दिया क्यों अल्लाह ने? इसलिए कि गलत चीज़ों पे आपको गुस्सा है। कोई कहते उनको तो गुस्सा आता ही नहीं है, बड़े ही बेकार इंसान है वो। गुस्सा आना चाहिए, हाँ, गुस्से को वल काजमीन अलगैस काबू कीजिए, पकड़ के रखिए, ऐसा ना हो कि आप गुस्से को अपने ऊपर सवार करें बल्कि गुस्सा आप पे सवार हो। तो बाकी बातें इंशाल्लाह हम इसका दोबारा कहीं सुने पड़ेंगे तो उस पर करेंगे। आगे चलते हैं अखलाक सैया में, बुखल, अल्लाह की पनाह, बुखल क्या होता है और बखीली कहाँ होती है, और बखीली किस में है? तो याद रखिए, अपनी ज़ात पे आए तो खूब फ़ायदा लेने वाले, और जब दूसरे की बात पे आए तो बिल्कुल ना देने वाले, ये बखील होते हैं। सूरत निसा 128 में अल्लाह ने ये बात बता दी कि हर नफ्स में बुखल है, बुख़दिरतिल अनफुसुश शुख। अगर शौहर की तरफ से बेरुखी का, ज्यादती का ख़तरा हो शौहर बीवी को, तो फिर सुलह कर दो, क्योंकि नफ्सों में बुखल मौजूद होता है। और बुखल से क्यों बचना है? सूरत तगाबुन 14 और 16 तक क्या अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं, वमें यू का शुख नफ्सी ही फौलाए कहुमुल मुफलेहून। जो शुख से, इसको शुख कहते हैं अरबी में, शुख से बच गया, दिल की तंगी से बच गया, वही कामयाब है। और आपकी दुआ भी थी आज की, तो उसी से मुतल्लिक सूरत हशर आयत 9 फरमाया, वमें यू का शुख नफ्सी ही फौलाए कहुमुल मुफलेहून। और जो लोग ईमान ला कर दारे हिजरत में पहले से मुकीम हो गए, वो इन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो उनके पास हिजरत करके आए, यानी मुहाजरीन को देख कर अनसार के दिलों में शुख नहीं आया, वो तो उनको देखकर खिल गए कि ये माशाल्लाह हमें नेकियों के मौके देने के लिए आ गए। फिर इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और भूखा था, आपने अपनी अजवाज के यहाँ भेजा कुछ मिल जाए, कहा सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है, आपने कहा कोई है जो इनकी मेहमानी करे, वही जो कल वाक़या पढ़ के आए हैं, वो सारा वाक़या इस हदीस में मौजूद है, सूरत हशर आयत 9 और बुखारी 3798 में ये वाक़या है कि वयू सरू नला अनफुजिम वलऊ का नबीम खसासा। खसासा पता किसको कहते हैं? वो भूख जिसमें पेट चिपक जाए, अंतड़ियों सूखने लगें, यदि खुद इतनी भूख लगी होती है कि अंतड़ियाँ सूखड़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दूसरों को खिलाते हैं। और याद रखिए, हर हाल में खर्च करने का अजर है, लेकिन अगर आपके पास खुद थोड़ा है फिर देना, ये अफजल सदका है। अबू हुरैरा की रिवायत है, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नबी कौन सा सदका अफजल है, फरमाए तेरा उस वक़्त सदका करना जब तू तंदरुस्त हो, माल की हिरस दिल में हो और तुझे फ़क्र का अंदेशा भी हो, यानी जब खूब ख्वाहिशें भी हैं, आरजुएं भी हैं, जवानी कह लीजिए, और उस माल में जब तुझे खुद भी इसकी ज़रूरत है, तो सदका करने में देर न कर कि यहाँ तक के रुख गले तक पहुँच जाए। सोचें, हाँ, जब दुनिया से जा रहे होंगे फिर तो यही ख्वाहिश होगी ना कि आप क्या करें इस वक्त, और उस वक्त तू कह दे वो फलां तो फलां का है, वो तो फलां वारसों का वो तो उसका हो ही गया, आप तो यू आर क्लोज टू डाई। ये बुखारी की रिवायत थी 1419। और क़यामत के दिन बखीली दिलों में समा जाएगी, जी, अल्लाह सजा देगा लोगों को। बुखारी की रिवायत है 6037 अबू हुरैरा से, आपने फरमाया ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा। आजकल का दौर क्या है? सुबह होती है, शाम होती है, बस ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है, वक्त के साथ वक्त जल्दी गुजरेगा, दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा और दिलों में बखीली समा जाएगी, शुख, और लड़ाई बढ़ जाएगी। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी क्या हरज है, क्या है हरज, क्या है? कहा कत्लो गारत करी, खून रेजी। बुखारी 6037, यानी क़्यामत के करीब बखीली है। आज बुखल दिल में, अल्लाह की बना, आपने फरमाया बुखल से बचो। मुस्लिम की रिवायत 6576 फरमाया, तुमसे पहले लोगों को जिस जुर्म ने तबाह किया था वो बुखल था, اور بخیل شخص کو تو دنیا والے بھی پسند نہیں کرتے. فرمایا بخل سے بچ جاؤ, کیونکہ اس بخل نے ان کو رشتے توڑنے پہ مائل کیا, وہ رشتے توڑ کے چلے گئے. آج بھی لوگ ایسے ہیں, کہتے نہیں ہم نہیں ملیں گے, کسی کو دینا پڑے گا, رشتے داروں سے ملنا, پیچھے دور دور رو, ایمی پھر ان کو چائے پانی پلانی پڑتی ہے. تو بخیل شخص کسی کا نہیں ہوتا, یہ ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ تھا 1698. تو کیا پتہ چلا, کیونکہ اگلا ٹاپک بالکل ہی اپوزٹ ہے اس سے, اس کو اور بھی سمجھ لیں گے کہ بخیل جو ہوتا ہے نا وہ فرائض بھی نہیں پورے کرتا. دوسروں کو دینا تو دور کی بات ہے, اپنے اوپر نہیں لگاتا. اب اس کا بالکل اپوزٹ ہے آگے ہمارے, اسراف, اللہ کی پناہ, مال لٹانا. اللہ مصرفین کو پسند نہیں کرتا. سورۃ الانعام 141, ان اللہ لا یحب المصرفین. دوسری بات ہے اسراف ہوتا ہے مال کو ضائع کرنا, اور اللہ کو مال ضائع کرنا انتہائی ناپسند ہے. اللہ کرے ہمیں بھی ناپسند ہو جائے. آج ہے بہت نا, ضائع بھی بہت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے صحیح مسلم 4483, ماں اللہ نے ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور باوجود قدرت کے دوسرے کا حق نہ دینا اور بغیر حق سوال کرنے کو حرام کیا ہے, اور تین باتیں تمہارے لیے پسندیدہ ہیں. چیک لسٹ میں ڈالنی ہے, فضول گفتگو, سوالوں کی کثرت, اور مال کو ضائع کرنا. یاد رکھیے اسراف مومن نہیں کر سکتا, یہ کفر کی نشانی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3356, آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے, تھوڑا کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے, بہت زیادہ کھاتا ہے. ابن ماجہ 3356. اور اسراف نہ کرنے کا حکم قرآن میں کدھر ہے؟ سورۃ الاعراف 31, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھانے کے اسراف سے بچنا چاہیے. ترمذی کی روایت ہے 2380, آپ نے فرمایا انسان سب سے بدترین برتن وہ ہے جو کبھی نہیں بھرا, اور وہ پیٹ ہے. یعنی پیٹ بدترین برتن ہے, انسان کو اتنے لقمے چاہیے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے, اور اس سے زیادہ مطلوب ہو تو پیٹ کے تین حصے کرے, ایک بولیے, دوسرا, تیسرا. یہ روایت تو ختم ہو گئی 2380 ترمذی. ہم کیا کرتے ہیں تین حصے, سب سے پہلے اپٹائزر, دوسرے حصے میں ہول میل جو بھی ہوتا ہے, کور, کون سا میل کہتے ہیں, سیون میلز, کتنے کورس, اللہ کے بندہ, اور تیسرے حصے میں کیا بھرتے ہیں, ڈیزرٹس. اللہ ہم پہ اپنا فضل کر دے. چلیے اسراف اور غرور سے بچنا ہے. نسائی کی روایت 2563, عبداللہ بن عمر سے فرمایا کھاؤ اور صدقہ دو, کپڑا پہنو, لیکن اسراف یعنی بے فائدہ خرچ کرنا اور غرور سے بچو. تو پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. واللہ ہی اس وقت اسلام کو بہت مال کی ضرورت ہے. ہم اپنی ذات پہ لگا کے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آج ہماری ہر شادی اسراف کا عملی نمونہ, ہمارے کپڑے اسراف کا نمونہ, ہمارے کھانے اسراف کا نمونہ. اور جس چیز پہ آپ یہاں سے جاتے ہی گھر میں عمل کر سکتی ہیں وہ اپنے کھانے, فریج کھولیے, سب کچھ نکالیے, جو چیزیں خراب ہونے کا اندیشہ اس کو پہلے استعمال کریں, کم از کم ایک ہفتہ تک گروسری نہ لے کر آئیں, ختم کیجئے پہلی, دیکھیے صاحب ہوگا, ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. ہے بہت نا, اس لیے ہم لوگ ان چیزوں کو دوسری طرف سے لے کر چلتے ہیں. جی مجھے پتا, پھر ہم کیا کریں اب اس کے بعد. جی اب دوبارہ کھولوں, اچھا جی, تو آپ مجھے یہ خبر نہ دیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا, یعنی میں نے کچھ کرنا ہے. اچھا جی, اچھا جی, ٹھیک ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اسراف نہیں کرنا, اپنی چیزوں کو استعمال کیجئے, پھر آپ جتنا مرضی شاپنگ کریں نو پرابلم, پہلی چیزوں کو استعمال کریں, جتنی مرضی گروسری خریدے پہلی استعمال کریں, پچھلی پڑی بھی اگلی لا رہے ہیں, کھانا آدھا بچا کل کا پڑا ہے آج کا لا رہے ہیں, فریزر بند نہیں ہو رہا, فریج بند نہیں ہو رہی, پینٹری جو بیچاری رو رہی ہے دھو رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں گروسری نہیں ہے, معصوم بچے بھوکے مر جائیں گے, یہ غلط طریقہ ہے. اپنے بچوں کو رف اینڈ ٹف پالیں, پورا بہرحال اتنا خریدے ہی نہ, اتنا پکائے ہی نہ کہ جو ضائع ہو. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے کینا, اللہ کرے کہ اس کے اوپر گھڑی رک جائے, वल्ला ही इस पे घड़ी रुक जाए। आज सुबह दुआ में भी यही बात हो रही थी, यहाँ फिर मैं यही कहने वाली हूँ कि किस तरीके से आज दिलों में कीने भर कर हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं और कबूल नहीं होती, नेकियों के काम करते हैं, वो कहाँ से कबूल होंगे। याद रखिए, कीना दिल की बुराई है, कीना इज़ एक्शन ऑफ हार्ट। सूरत बकरा 204-205 अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक किरदार बयान किया गया पीछे, और वो कौन सा है, व युशहिदुल्लाह अला मा फी कल्बिही व हुवा लद्दुल खिसाम। कोई एक शख्स है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन असल में झगड़ालू भी है, बात बात में अल्लाह को गवाह बनाता है, और अगर उसको हाकिम बना दिया जाए तो क्या करता है, ज़मीन में फसाद फैलाता है और नस्लों को बर्बाद करता है। कीना एनिमिटी है, दिल से दुश्मन होना, ज़ुबान से दोस्तियाँ दिखाना। सूरह तौबा 64 अल्लाह ताला कहते हैं, यहज़रुल मुनाफिकून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरा। मुनाफिक डरते हैं इस बात से कि कोई ऐसी सूरत ना नाजिल हो जाए जो खबर दे दे उनके दिल की बातों की। आज भी याद रखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान सुनते वक्त मिसफिट फील करते हैं। वजह क्या है उस बात की, क्योंकि उनको उस वक्त ये लग रहा होता है कि ये हमारे अंदर के मामलों को खोल के रख देगी, इससे बचना चाहिए। कीना दिल का खोट है, खोटे पैसे होते हैं ना, नहीं चलते, खोटा दिल भी अल्लाह के यहाँ कहीं नहीं चलता। सूरत मोहम्मद 29। करें क्या, कीने से कैसे बचें? नंबर एक, दिल के बर्तन को साथ साथ साफ करें। आज का जो मेरा शुरू का इंट्रो सेशन था, वो सारे का सारा कीने पे था, जो मोटी मोटी बातें पेश की है ना, यकीन कीजिए दिल से आज यहाँ से उठने से पहले ये कीना निकाल दीजिए। किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं समझना, खुद को बहुत बड़ा नहीं समझना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह के नबी क्या कहा करते थे, बहुत प्यारी रिवायत है अबू दाऊद 4860 अब्दुल्ला बिन मसूद से, आपने फरमाया, तुम मेरे सहाबा के बारे में आकर मुझे गलत बातें ना बताया करो, गलत से मुराद शिकायतें ना लगाया करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम में से जिसके पास आऊँ तो मेरा दिल साफ हो। इज़ इट ट्रू? किसी के बारे में कोई बुरी बात सुने तो उसके सामने आते ही आपके दिल में नेगेटिविटी आती है कि नहीं? तो आपने कहा मेरे सामने किसी की बात ना लाया करो, एक जनरल रूल है। फिर दूसरी बात यह कि शुभे वाली चीज़ों से दिल को बचाएंगे, इंशाल्लाह कीना इससे दिलों से निकल जाएगा। बुखारी की रिवायत है 52। और अगली बात है, कीने से बचने की दुआएं कीजिए। कौन सी दुआ है कुरान में कीने से बचने की? रब्बना, पढ़िए सारा मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह, तो गोया के फिर हम कीनों से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं करेंगे। चाहिए क्या? दिल को सलामत रखिए। सूरह शोरा 87-89, वला तुख्सिनी यौम युबासून यौम ला यन्फ़ौ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। देखिए, घर साफ हो जाए तो केयरफुल हो जाते हैं, बच्चों को कचरा नहीं डालने देते, चीज़ें नहीं फैलाने देते। आज यहाँ दिल साफ करके जाए और फिर उसके बाद उसको साफ रखिए। एक जुमला लिखिएगा, साफ करना आसान है, साफ रखना मुश्किल है। कितनों को मेरी बात समझ आई है? इट्स इजी टू क्लीन बट इट्स हार्ड टू मेंटेन। इस दिल को मेंटेन कीजिए। किसी की मिसाल है जिसकी अल्लाह ने कुरान में दलील दी हो कि उसका दिल बड़ा साफ था? उन्हीं का ही होगा, और किसका होगा? जी बिल्कुल सही आपने कहा, सूरत साफ़ात 82-84, इस जा रब्बहू बिकल्बिन सलीम। जब वो अपने रब के पास आए कल्बे सलीम से, तो इब्राहिम का दिल सलामत था। और इसी तरह से एक दुआ अल्लाह के नबी मांगा करते थे, ये भी तवील दुआ है, इंशाल्लाह आपको अगले कोर्स में बहुत सारी दुआएं सिखानी है। यकीन करें, हमारी कोशिशों से वो नहीं मिलता जो दुआओं से मिलता है। कई चीज़ें आप सोचते हैं ये कहाँ से आ गई, दुआओं से मिलती हैं। तो बड़ी प्यारी रिवायत है, आप इसको भी उसमें डलवा दीजिएगा असाइनमेंट में, अरबी के साथ उर्दू ये खुद उसकी लिखेंगे, मैं यहाँ सिर्फ रेफरेंस बोल देती हूँ थोड़े से डिटेल के साथ। तिर्मिज़ी की रिवायत है 3551, इब्ने अब्बास रावी हैं कि अल्लाह के नबी अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, रब्बी आइन्नी अवला तोइन अलैया, ए अल्लाह तू मेरी मदद कर और मेरे खिलाफ किसी की मदद ना करना, यानी क्या मतलब, मेरी मदद कर और ना मदद कर किसी और की। वन सुर नी वाला तन सुर अलैया, मेरे ऊपर ताईद कर मेरी और ना ताईद कर किसी की मेरे खिलाफ। वम कुर ली वाला तम कुर अलैया, और मेरे मकर में तो मदद कर लेकिन किसी का मेरे खिलाफ मकर हो तो उसमें मदद ना कर। वह दिनी व यस्सिर अल हुदा ली, वन सुरनी अला मम बगा अलैया, रब्बी जालनी लक शक्कार लक जक्कार लक रखाबन लक मितवान लक मुखबितन इलैका अव्वाह मुनीबा, रब्बी तकब्बल तौबती वक्सिल हौबती वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती वसद्दित लिसानी वाहदि कल्बी वसलुल सखीमत सदरी। ये आपको मसनून दुआओं में भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ऐसी दुआएं कब मांगा करें? जब सफ़र में होते हैं, गाड़ी में खोली बुक, अगर आपके पास ऐप है तो ऐप्स में भी होंगी ये दुआएं, एक एक दुआ पे गौर करके पढ़ा करें। बहुत ही खूबसूरत करेक्टर बिल्डिंग की बेहतरीन दुआ और अल्लाह की मदद लाने की दुआ है। सवाल पैदा होता है कि ना आ गया दिल में तो होगा क्या? अब ये इंजाम सुनकर तो वाकई दिल चाहेगा दिल को साफ ही करें। पहली बात है, दिल में कीना रखने वाले की मग़फ़रत नहीं होती। मेरी आपकी बात नहीं है ये, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर पीर और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस बंदे की मग़फ़रत कर दी जाती है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, सिवाय उस आदमी के जो अपने मुसलमान भाई के साथ कीना रखता हो। और कहा जाता है कि इन दोनों को देखते रहो, यानी कीप एन आई ऑन देम, नज़र रखो। कैसे? कि यहाँ तक कि ये सुलह कर लें, फिर देखते रहो यहाँ तक कि वो सुलह कर लें, देखते रहो इनको जब तक कि वो सुलह कर लें। ये मुस्लिम 6544 है। क्या पता चला? कि अपने दिलों को साफ़ करें। बिलीव मी, इससे ज़्यादा और किसी को हक नहीं है दिल को साफ़ करने के, किन के सिवा? जो कुरान को इस दिल में लाते हैं। आयतें याद करनी है, दुआएं याद करनी है, तर्जुमा याद करना है, दिल को साफ़ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला दिल को पाक कर देंगे। इसके बाद देखिए जो लिस्ट है हमारे हाथों में, नंबर एक हिर्स तमा लालच, फिर अगली है ऐब तराशना, फिर नेक्स्ट पेज पे जाइए गीबत चुगली बुख्तान, फिर मजाक उड़ाना तुर्श मजाजी राज फाश करना और झगड़े करना और झूठ बोलना। कितनी रह गई हैं बुराइयाँ? फिर कोर्स पूरा हो जाएगा ना। हम इसको इंशाल्लाह, ये सबको इसका थोड़ा बहुत तो पता ही है ना, मैं दो चार जुमलों में इस सारे को वाइंड अप भी कर दूंगी, कर सकती हूँ, कर भी लूँगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका एक हफ्ता मुझे खाली दिख रहा है। कौन सा? जो पहला वीक होगा ना उसमें हमने बहुत सारी बची खुची चीज़ें करनी है ना इंशाल्लाह, इन चंद टॉपिक्स को। और साथ नेकी के सफ़ीर बता दूँ, राज खोल दूँ? ये मुझे कहती हैं आप हमारे बड़े राज खोलते हैं। बहरहाल ये एक जोक है, कोई राज नहीं है। आपको अब इस्लाम के सफ़ीर बने हैं ना, तो आगे क्या बनना है? नेकियों के सफ़ीर बने। बड़ी प्यारी हिस्टोरिकल सी बुक है, वो साथ लेकर कुछ ये टॉपिक लेकर फिर इसी तरह बाकी ये आपको बताते हैं ये आपके साथ क्या करेंगे, तो फिर आपको इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई सवाल कर लीजिए, कोई हक रहता है किसी का मेरे ऊपर तो ले ले। जी आप तस्बीह पढ़ते हैं जी, आपको पढ़ना है? सीधे हाथ पे पढ़ते थे अल्लाह के नबी। उल्टे हाथ से अमूमन गंदगी साफ की जाती है, उल्टा हाथ एक सिंबल है असल में। नहीं, उल्टे हाथ के साथ संधा कीजिए, ये नाइंसाफी कैसे हो गई? बाएं हाथ से बाएं हाथ के काम कीजिए। नहीं देखिए, उल्टे गंदगी साफ नहीं करेंगे तो नेकी करने के काबिल कहाँ रहेंगे? तहारत नहीं होगी तो इबादत कैसे होगी? जी देखिए, जूता पहनते हैं, मेरा एक क्वेश्चन है, जजाकल्ला खैर, जूता पहनते हैं राइट फुट लेफ्ट फुट, माई क्वेश्चन इज वाई सीधे में उल्टा और उल्टे में सीधा क्यों नहीं पहनते? कंपनी जिसने जूता बनाया उसने कहा कि इधर सीधा डालना इधर उल्टा, कोई सोचता भी है कि उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा? और हाँ जी, तो पहनेगा तो गलती होगी ना, फिर गिरेगा तो क्या कहेगा? कंपनी ने जूता अच्छा नहीं बनाया, तो क्या हमें जूता बनाने वाली कंपनी पे तो इतना ट्रस्ट है? तो दो सीधे और उल्टे हाथ वाले पे ट्रस्ट नहीं है। अल्लाह पे ट्रस्ट कीजिए, अल्लाह ने इसमें खैर रखी है, और अगले चंद सालों में साइंस ने खुद ही बता देना कि उल्टे हाथ में ये मसले होते हैं और सीधे हाथ के ये प्रॉब्लम, बता दिए माशाल्लाह। अल्लाह साइंस को सलामत रखे। और मैं अक्सर बोलती हूँ कि आने वाले दौर का बेहतरीन मुबल्लिग साइंस है। जैसे दाबतुल अर्ज़ निकलेगा ना, और उसके यही मुँह पे होगा कि लोग अल्लाह की निशानियों से गाफिल थे। अल्लाह के नबी ने कहा जब लोग दूसरों को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर छोड़ देंगे तो उस वक़्त फिर ये काम अल्लाह जानवरों से करा लेगा। तो अपना हिस्सा डालिए और बाकी बस, दैट्स इट। ठीक है जी, प्लीज़। आजजी इज्ज़ है जी आपका, आजजी ये वो नहीं है कि जो मैं बड़ी आजिज़ बंदी हूँ, ये आजजी इज्ज़ है। वही बात अभी दुआ में भी पड़ी है ना, मिनल इज्ज़ी। इज्ज़ क्या होता है, जैसे हम कहते हैं हाय मैं मजबूर हो गई फिर लोगों ने मुझे दबा लिया, ये मुराद है कि अल्लाह के दीन पर अमल करने के मामले में आजिज़ ना बने। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे हाल इनके पास काफ़ी कुछ है आपके साथ शेयर करने को। आप जाना, आप सिस्टर शनिशा अब जा सकते हैं, जिसको भी जाना है आप जा, ऑफिशियली अब आप जा सकते हैं, लेकिन अन ऑफिशियली आप कभी भी नहीं जाएंगे इधर से इंशाल्लाह ताला। आप अपना माइक लेंगे कि मेरा लेंगे, उसमें डाल ले तो बेहतर है, ले लीजिए अभी यूज़ कर।
अच्छा नहीं बन गया,
हो गया ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि
वबरकातुहू। कल से क्या करना है आप लोगों ने, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम ने करना क्या है कल से? बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा इंस्टीट्यूट आना है जी। अच्छा हम उस्तादा से पूछ लेते हैं कि उस्तादा क्या कर रही हैं कल से? अच्छा बता दिया, ठीक है सही, जिक्र सही। इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा प्लान देख लेते हैं कि इंशाल्लाह कल से कौन से लेक्चर्स स्टार्ट होने वाले हैं और क्या है इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें सच में इंस्पिरेशन मिलती है कि बंदा मोमिन वाकई में सोता नहीं है। ओके मतलब सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसासा माशाल्लाह आप जिस तरह से मोटिवेट करती हैं ना, एक चीज़ है कि आप ना थकती हैं, थकने देती हैं साथ वालों को, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मतलब सारों को एक्टिव ही रखती हैं। और मैं खुद सोच रही थी कि हम क्या करेंगे, मैं लिख तो रही हूँ विंटर वेकेशंस हैं हमारे, सॉरी मार्कर्स हमारे सारे अब्दुल्ला के पास शायद चले गए तो दिख नहीं रहा, विंटर वेकेशंस हैं हमारे इंशाल्लाह ताला, और बहुत ज़्यादा दिन की अगर सोचा जाए तो जी बताए।
हम जब किसी ट्रिप से होकर आते हैं ना, जब वापस आते हैं 2-4-6 दिन रहकर, तो जब मैं अगले दिन आती हूँ तो मेरे फ़ोन पे इतने मैसेज होते हैं, समझ नहीं आ रहा आज हम क्या करें, ऐसे लगता है कोई काम ही नहीं। वो इतनी भाग दौड़ होती है साथियों की कि उनको फील हो रहा होता है कि अब सब काम ख़त्म हो गए हैं। तो अब आप लोग सो नहीं जाएंगे, बल्कि अतीक आपको सोने भी नहीं देंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इंशाल्लाह आप लोग।